बंबई के पास, उसमें किसान रहता था। उसका लड़का सातवीं पढ़कर बंबई के पेढ़ी में चपरासी की नौकरी करने उसको रख दिया गया। उस लड़के का नाम था रामानुजम। मुनिमों के पास चाकरी करता था, चाय ले आओ, झाड़ू लगा दो। लेकिन रामानुजम ने अपने पिता के साथ गुरु के पास जाकर सारस्वती विद्या का मंत्र ले रखा था। और गुरु ने कहा, बेटा कैसी भी परिस्थिति आए, नेकी के काम नहीं छोड़ना और डरना नहीं। डरे तो वही जो बदी के काम करे, नेकी के काम करे, क्यों डरे। बेटा कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपनी आत्मिक शक्ति का फायदा उठाना। गुरु ने बता दिया था, सारस्वती मंत्र दे दिया था। सातवीं पढ़कर वो रामानुजम काय की नौकरी करता था, चपरासी की। किसका बेटा था? किसान का बेटा। कौन से प्रांत का था? महाराष्ट्र। नौकरी कहां करता था? बंबई। ठीक, अच्छे बच्चे हो। मुनिम लोग हिसाब करते करते जब उनका हिसाब बिठाने में कुछ गलती हो जाए, फिर से बंदियां फिराए। रामानुजम कहता कि मेरे से पूछ लो। अरे बोले, चल रहे तू तो चपरासी, सातवीं पढ़ा हुआ किसान का बच्चा, जा झाड़ू लगा दे। फिर भी वो घबराया नहीं। एक बार दो बार इंसल्ट सह लिया, चार बार, लेकिन जब भी मुनिम लोग, यार हिसाब नहीं मिलता, रामानुजम बोलता मेरे से पूछ लो। एक बार मुनिम ने पूछ ही लिया और रामानुजम ने तनाक से, अब तो जिस मुनिम को हिसाब किताब में गलती लगती है, रामानुजम आइयो भैया, और रामानुजम चटके से उनका बही खाता का हिसाब मिला देता है। लोगों ने बोला, इतना हम लोग 60-60 साल के हो गए, पिछले 40 साल से मुनिम ही करते, हम जो नहीं अंक मिला सकते, रामानुजम गणित में इतना अव्वल नंबर। उस जमाने में मिस्टर हार्डी यूरोप में प्रसिद्ध था, गणित जगत में बड़े उम्र के लोग जानते हार्डी का नाम। रामानुजम को बोला कि हार्डी को अपनी योग्यता लिख के भेज दो। उसने योग्यता के साथ गणित के कुछ नमूने लिख के भेज दिया। हार्डी ने यूरोप में बुला लिया। रामानुजम से हार्डी ने जो सवाल पूछे, चट जवाब। रामानुजम हैरान हो गए, हार्डी हैरान हो गया। तमाम गणित वेताओं को और मनोवैज्ञानिकों को बुलाया कि रामानुजम के पास ऐसी क्या टैक्ट है। तो मनोवैज्ञानिक देखने लगे कि रामानुजम जब बोर्ड पर प्रश्न लिखा जाता है तो उसकी आंख की पुतली इधर उधर नहीं हिलती, और प्रश्न पढ़ते समय इतना एकाग्र हो जाता है कि मानो रोबोट है। और प्रश्न का अल्प विराम पूर्ण विराम होते ही रामानुजम ध्यानस्थ हो जाता है, आधी मिनट के लिए उसकी आंख की पुतली ऊपर को चली जाती, तीसरी नेत्र में रूहानियत के खजाने से एक होकर फिर वो गणित का नमूना सही कर देता। एक बार रामानुजम रोड क्रॉस कर रहा था, कोई मूर्ख ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ जाए तो कैसी पीड़ा होती होगी जरा सोचो। एक फ्रैक्चर हो गया, एक दूसरी जगह चोट लगी, हॉस्पिटल में ले गए, पाटा पुटी करना था। डॉक्टर ने कहा, रामानुजम यू आर वेरी सीरियस, ओहो तेरे को बहुत पेन हो रहा है। बोले, नहीं पेन मेरे को नहीं हो रहा है, दर्द मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे पैर को हो रहा है। फ्रैक्चर मेरे को नहीं हुआ, इस हाथ को हुआ है। मुझे पीड़ा हो गई, ऐसा करके मैं कायर नहीं बनूंगा, पीड़ा शरीर को है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। हरि ओम। मुझे गुरु ने बताया कि जब भी पीड़ा हो तो मैं भी मारूं, मैं पीड़ित हूं, ऐसा सोचकर पीड़ा को गहरे मन में मत उतरने दो। पीड़ा है शरीर में है, दुख है मन में है, लेकिन तुम्हारा रूह, तुम्हारा आत्मा परमात्मा का है। हरि नाम लेकर आत्मशक्ति जगाकर जल्दी निरोग हो जाना चाहिए। ऐसे ही जब पेपर आए, मुझे नहीं आता, कठिन है, तो फिर जा। कुत्ता जब भौंकता और तुम दौड़ने लगो तो कुत्ता तो तुम्हारा पीछा करता, और मिसेस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन कुत्ता भौंके और तुम खड़े हो जाओ डंडा लेकर तो कुत्ते की पूंछ दब जाती है। ऐसे ही विघ्न बाधा प्रॉब्लम आए, जो घबरा जाते हैं वो विघ्न बाधाओं से दब जाते हैं, लेकिन हरि ओम हरिओम हरिओम हरिओम। मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है, प्रॉब्लम से डर जाता है। हरे ओम मां हरे ओम मां हरे ओम। रामानुजम का पटा पट्टी हो गया, छोटा मोटा ऑपरेशन हो गया, कमरे में बेडरूम बेड रेस्ट पे चला। हार्डी को पता चला कि रामानुजम का एक्सीडेंट हो गया। हार्डी गाड़ी भगाता आया दूसरे दिन। रामानुजम समझ गया कि हार्डी की ड्राइविंग है। जय राम जी की। कितनी आइडिया। रामानुजम ने खिड़की से देखा, बोले बराबर। हार्डी की गाड़ी के प्लेट नंबर 4 होते हैं नंबर, रामानुजम ने देख लिए। शौकीन था विद्या का, एक एक नंबर पर गणित का एक एक नमूना बनाकर कॉपी में तैयार किया। हार्डी इंक्वायरी ऑफिस से पूछकर जब ऊपर आया सेकंड फ्लोर पर, हार्डी ने बोला रामानुजम यू आर सीरियस? बोले नो नो आई एम नॉट सीरियस, मैं सीरियस नहीं हूं, मैं खुश हूं, थोड़ा पीड़ा हो गई, पटा हो गया, अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तुम्हारी गाड़ी के 4 नंबर है, उसके नंबर के आधार पर 4 गणित के नमूने बनाए, देख लो। हार्डी ने एक नमूना समझा, दूसरा नमूना समझने में उसे आधा घंटा लग गया, तीसरा नमूना नहीं समझ सका, घर पे ले गया, 6 महीने के बाद समझा, चौथे नमूने को समझने के लिए मिस्टर हार्डी को विल करके जाना पड़ा कि रामानुजम ने बताया इसलिए राइट होगा। 12 साल के बाद चौथा नमूना साबित हुआ। ये भारत के एक किसान के बच्चे की कहानी, महाराष्ट्र के किसान के बच्चे की कहानी, ये कोई कपोल कल्पित या बाबा आदम के जमाने की बात नहीं है, इस युग की बात है, ऐतिहासिक बात है। तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छुपी है तुमको भी पता नहीं, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं, जय राम जी की। लेकिन तुम्हारा बाप, मेरा बाप, बाप का बाप जो परमात्मा है, वो जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या खजाना पड़ा है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर भी नहीं बता सकते मुझे कि एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, एक बीज में कितने कितने बीज छुपे हैं, बता सकते क्या? एक बीज बो दो, उसमें से एक वृक्ष हुआ, उसके बीज हुए, वो बो दो कितने होंगे, वो बो दो कितने होंगे, बता सकते हैं? नहीं। जैसे तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में है, जाग सके तो जाग। रोहित नाम का लड़का, पिताजी मर गए, बैलगाड़ी चलाना, घर का गुजारा करना, छकड़ा चलाता, नमक भर के जा रहा था, जोरों की बारिश आई, घुस गई पहिए गाड़ी के दलदल में, बिजली चौंकी, मेघ गरजा, बैल भाग गया, खूब बरसात आई, नमक भर गया। लेकिन रोहित ने स्कूल के कोई पुण्यात्मा शिक्षक होते हैं, पवित्र, जैसे आपके शिक्षक बंधु यहां लाए आपको, ऐसे पवित्र शिक्षक शिक्षिकाएं भी तो हैं दुनिया में, उन्होंने गुरु का सत्संग सुना दिया था विद्यार्थियों को, और रोहित ने पकड़ रखा था कि कैसा भी परिस्थिति आ जाए अपने दिल को कोसना नहीं, हिम्मत हारना नहीं। आंधी तूफान, मेघ गरज रहा है, नमक बह गया है, बैलगाड़ी धस गई है, बिजली चौंकती चमकती है, वो लड़का कहता है, रोहित कहता है कि बिजली तू किसे चौंकाती है, मेघ तू किसे डराता है, मैं बैलगाड़ी नहीं के धस जाऊं, मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, और मैं नमक नहीं के बह जाऊं, मैं तो तेरी चमक में अपनी आत्मशक्ति जगाऊंगा, अपनी मंजिल को तय करूंगा। हरे ओम मां हरे ओम मां हरे ओम। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता, छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर न करे। अपने दिल में दिलवर बैठा है, उसका भी अनुभव कर लिया ध्रुव ने 5 साल की उम्र में, प्रहलाद ने 12 साल की उम्र में, मीरा ने मेवाड़ को झुमा दिया, क्या क्या चार पांच क्लास पढ़ के यहाँ ग्रेजुएट होकर सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे पेट भरने के लिए लाचारी, पेट भरने की लाचारी नहीं, तू दिल को दिलबर से भी भर सकता है, पेट तो आसानी से भर जाए। जो शिक्षा में चलते हैं लेकिन दीक्षा के रंग से नहीं रंगे हैं उनको थोड़ा ही फायदा मिलता है, लेकिन शिक्षा के साथ जो दिशा, दीक्षा का मतलब है जो उचित आत्मशक्ति की दिशा, दिशा के रंग से जो रंग गए हैं उनको चार गुना फायदा होता है। शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि में तेजस्विता और संसार में महकते हुए फूल की नाई सुवास फैलाते हैं और अपने माँ बाप, देश और खानदान का नाम उज्जवल कर देते हैं। और ये खजाना सबके अंदर पड़ा है। मैं तुमको याद शक्ति बढ़ाने की दो चार बातें कहूंगा, सुनोगे? अच्छा, कोई बीच में खड़ा हो जाए तो तुम क्या करोगे? 10 बार रोज तुम करो, थोड़े ही दिन में तुमको लगेगा कि अरे वाह, तुम्हारा विल पावर और याद शक्ति बढ़ेगी। एक तो तुम्हें सुबह नींद में से उठोगे ना तो क्या करोगे पता है? शरीर को खींचा, थोड़ा सा खूब खींच खींच के एक दो मिनट ढीला छोड़ा, ताकि आत्मा की शक्ति तुम्हारे शरीर, मन और बुद्धि में ज्यादा आए। बिल्ली और कुत्ते को टाइम सर भोजन या सोफा या एयर कंडीशन नहीं मिलता, फिर भी बिल्ली और कुत्ता ज्यादा एक्टिव होता और कम में कम बीमार पड़ता है, क्योंकि वो नींद में से जब उठता है तो शरीर को खींचता है। बूढ़े भी खींचे तो बुढ़ापे की कमजोरी ज्यादा नहीं रहेगी, और बच्चे खींचे तो जीवन उछलते हुए बाल की नहीं। तो रोज नींद में से उठोगे तो क्या करोगे? शरीर को खींचेंगे, खूब खींचेंगे। 2 मिनट खींचना, 2 मिनट ढीला छोड़ देना, फिर 2 मिनट शांत होकर बैठना कि आज का दिन मैं आत्मशक्ति जगाऊंगा, माता पिता और मेरे शिक्षकों का नाम उज्जवल हो ऐसा विद्यार्थी बनूंगा। 2 मिनट ऐसा सोचकर फिर भगवान के नाम का थोड़ा जप करके जोर से हंसना, प्रभु मेरा और मैं प्रभु का।
वाह वाह वाह।
घर वालों को, कुटुंबियों को बोल देना, माँ बाप को, कि सुबह हम 2 मिनट के लिए पागल जैसे लगे तो फिकर मत करना, फिकर नाट। उस सुबह की जो हंसी है, बच्चे भी हंसे और उनके माई बाप भी हंस सके, ये सबके लिए प्रयोग है। 2 मिनट की सुबह की हंसी तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा घुमाएगी, और 2 मिनट की सुबह की खुशी दूसरे 2 मिनट को खुशी देगी, और दूसरे 2 मिनट तीसरे को, आपका दिन खुशी से जाएगा। खुशी अच्छी है कि रोती सूरत अच्छी है? ठीक, ये बात तो समझ गए। करोगे तुम? फिर दातुन वातुन करके, ब्रश से तो दातुन करना अच्छा है, फिर भी जो भी करो, 5-7 तुलसी के पत्ते चबा दिए और 1 गिलास पानी पिया रात का रखा हुआ, जिससे कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, दांतों की बीमारी जल्दी नहीं आएगी, जलंधर भगंदर भाग जाएगा और याद शक्ति में मदद मिलेगी। जो जल्दी जल्दी खाता है वो चिड़चिड़िया हो जाता है, भोजन चबा चबा के करे, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दांत मजबूत होते हैं और स्वभाव में चिड़चिड़ियापन नहीं आता। समझ गए तुम? विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में रह रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकलते थे। सुबह की खुली हवा में बल बुद्धि बढ़ता है और सौंदर्य निखरता है। बरसात पड़ी थी कहीं रात को, खूब जोरों से पुलिया पर से पानी नदी में खूब बहा जा रहा था। लड़के खड़े थे और हाथ में वो पिस्तौल लेकर नदी में बहते हुए पक्षियों के घोंसले, लकड़ के टुकड़ों पर बच्चे निशान मार रहे थे, लेकिन एक भी निशान किसी का सफल नहीं हुआ। विवेकानंद ने हंसकर उन बच्चों को कहा, क्या कर रहे? बच्चों ने कहा, बैठा पानी है, नाचते हुए घरों ने है, तिनके है, निशान कैसे लगेगा? विवेकानंद ने कहा, गिव मी योर पिस्तौल, पिस्तौल लाओ। धा 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 धा, 7 के 7 निशान सही। जयराम जी की। बच्चे विवेकानंद के पैर पकड़ने लगे, बोले आप कौन सी कॉलेज में कौन सी स्कूल में निशाना सीखे। बोले हम किसी स्कूल कॉलेज में निशाना नहीं सीखे हैं, मैं रोज ध्यान करता हूँ, जो ध्यान करता है एकाग्र होता है, उसका निशाना भी सही होता है और निर्णय भी सही होता है। थोड़ी सी असावधानी बड़ा खतरा पैदा कर देती है। 1992 में शुक्र ग्रह खोजने के लिए अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा, लेकिन जिस समय जहां जिस नियत से आना था वो थेने गुम हो गया और पूरे अमेरिका के विज्ञानियों को नीचा देखना पड़ा। जयराम जी की, पूरे अमेरिकन विज्ञानियों को विश्व के आगे नीचा देखना पड़ा। खर्चा हुआ था करोड़ों डॉलर, ऐसे अरबों रुपया खर्च हुआ था, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए और जिस समय आना चाहिए लापता हो गया। वो कारण खोजने के लिए कमीशन बिठाई और खोजते खोजते पता चला कि जाने से माइल गिनती करने में प्लस और माइनस चिन्ह होते हैं कि नहीं होते हैं। और कोई मूर्ख विज्ञानी प्लस माइनस का चिन्ह लगाने में गलती कर दिया, सारा गणित उल्टा हो गया और अरबों रुपए बर्बाद हो गए और जिंदगी भर सिर झुका रहा। थोड़ी सी गलती प्लस और माइनस का निशाना मारने में और बड़ा घाटा पड़ गया। तो आप लोग जो भी पढ़ोगे, बच्चे सुन रहे हो, जो भी करोगे सावधानी पूर्वक करोगे। रसोई बनाए तो सावधानी पूर्वक, और ड्राइविंग करे तो सावधानी पूर्वक, पेपर लिखे तो सावधानी पूर्वक, और पढ़े तो सावधानी पूर्वक। कैसे पढ़े बाबा सावधानी पूर्वक? पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो, थोड़ा पढ़ा जितना एक दो पाठ, फिर एक मिनट के लिए आधा मिनट के लिए और जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा मन घुमा दिया। एक सैनिक था, क्या हुआ सुनो, उसके घोड़े के नाल का एक छोटा सा कील निकल गया। आज लगवाता हूं कल लगवाता हूं, आलस्य कर लिया। देश पर शत्रुओं ने धावा बोल दिया। राजा ने चिट्ठी लिखकर उस बेवकूफ सैनिक को दिया कि जाओ ऐसा ऐसा बॉर्डर पर कह दो। उसने घोड़ा भगाया, लेकिन नाल में से एक कील निकल गई थी तो फिर दूसरी भी कमजोर होकर भागते घोड़े के पैर से नाल निकल गई, घोड़ा गिर पड़ा, सैनिक को फ्रैक्चर हुआ। चिट्ठी टाइम से न पहुंची, पूरा देश गुलाम हो गया। कहावत चल पड़ी, खील न ठुकाई, घोड़ा मरा, सैनिक गिरा और देश हारा। दो पैसे की खील टाइम से ठुकवा दी होती तो देश बर्बाद नहीं होता। नालायक उसने अपना काम टाइम से नहीं किया, पूरे देश को गुलाम होना पड़ा। इसलिए अपना काम अपने टाइम से कर लेना चाहिए। समझ गए तुम लोग? नेपोलियन युद्ध विद्या में बड़ा होशियार था। नेपोलियन का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन वो फ्रांस में वाटरलू इलाके में युद्ध करने गया। जो समय निर्धारित था उस समय उसका मूर्ख सेनापति न पहुंच पाया। केवल सेनापति 10 मिनट के लिए लेट हुआ और मुट्ठी भर विरोधियों ने नेपोलियन को कैद कर लिया और सेंट हेलिना जेल में बेचारा सड़ता रहा। 10 मिनट की असावधानी इस बहादुर को सेंट हेलिना जेल की हवा खिलाने में लग गई। इसीलिए आप लोग सावधान रहेंगे, पक्की बात है? हाँ। अच्छा, अब एक चौपाई और पक्की कर लो। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, ये भी पक्की करने जैसी है। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय
भाषण पुनि नम्रता,
आदर प्रीति विचार,
आदर प्रीति विचार,
प्रिय भाषण पुनि नम्रता,
प्रिय भाषण पुनि नम्रता।
आपकी बोलचाल कैसी होनी चाहिए? प्रिय होनी चाहिए। शत्रु को भी गाली गलोच न निकाले। उसकी करनी वो करे, लेकिन कठोर वचन आपका दिली दुख करते हैं। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण
पुनि नम्रता,
आदर प्रीति विचार,
आदर प्रीति विचार।
घर में अतिथि आ गया हो, पिता का फ्रेंड आ गया हो, मम्मी की सहेली आ गई हो, तो आप लोग आइए, बहन जी आइए, भैया आइए, पिताजी अभी आ रहे, आप बैठिए। तो ये प्रीति के वचन आपके जादू का काम करेंगे। पिता का दोस्त तो है, लेकिन वो तुम्हारा भी हितेशी बन जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण पुनि
नम्रता,
आदर प्रीति विचार,
आदर प्रीति विचार,
लज्जा क्षमा अयाचना,
लज्जा क्षमा अयाचना,
ये भूषण उरधार,
ये भूषण उरधार।
एक तो प्रिय भाषण, दूसरा बड़ों के आगे नम्रता से बात करना, तीसरा सज्जन श्रेष्ठ पुरुषों को आदर देना, और चौथा विचार के काम करना। पांचवा सद्गुण है कि बेशर्मा नहीं होना चाहिए। जयराम जी की पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करके यूं करके यूं करके नाच रहे हैं रस्तों में सड़कों पे, आवारा जैसा जीवन अच्छा नहीं। जयराम जी की लज्जा क्षमा, किसी की गलती हो गई तो दिल में क्षमा रख के उसको डांटो। अभी बच्चों को थोड़ा डांटा, लेकिन इनको सचमुच में थोड़ी पुलिस के कस्टडी में भेजूंगा, खाली आंख दिखाऊंगा बस, फिर दोबारा ये नहीं करे। अपने दिल में दया रखना चाहिए, है ना, समझ गए। लज्जा क्षमा अयाचना, मेरे को दे मेरे को दे, जरा सा प्रसाद बढ़ता लोग याचना करने लगते। नहीं, हम जब भजन करते थे तब करते थे, हम बैठ जाते थे, कुछ होता था एक बार खाने को, मैं क्या मैं घर का लेके इधर खाऊंगा, नहीं तू खिलाएगा तब खाऊंगा, नदी में फेंक दिया नर्मदा में। हम याचना नहीं करेंगे, हम क्षत्रिय हैं, भिख नहीं मांगेंगे, तेरे को खिलाना है तो आ। चोर को डाकू को खूनी को सरकार रोटी खिलाते और हम तेरा भजन करते और भिख मांगने जाएंगे, हम नहीं जाते। एक बार नहीं तीन तीन बार उस परमात्मा ने कैसी कैसी लीला की और मैं को खाया और मैं तंदुरुस्त हूं अभी भी। जरा जरा बात में मांगने की आदत नहीं, जरा पेन देना, जरा रबड़ देना, जरा ये देना, अरे आपके पास है तो किसी को दो, लेकिन आप ऐसा ना बनो कि मांगते फिरो। जयराम जी की तो ये फिर से पक्का करो। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण
नम्रता,
आदर प्रीति विचार,
आदर प्रीति विचार,
लज्जा क्षमा अयाचना,
लज्जा क्षमा अयाचना,
ये भूषण उरधार,
ये भूषण उरधार।
पिता ने देखा ये विद्या पढ़ के आया कि विद्या घुमा के आया, क्यों बेटा पढ़ के आया, बोले हाँ पिताजी मैं पढ़ के आया। पिता ने देखा कि नम्र तो है नहीं, क्या पढ़ा बेटा, ऐसी विद्या पढ़ा जिससे सब पढ़ा जाता है। बोले पिता वो कौन सी विद्या है, बोले वो आत्मविद्या है। बोले वो तो मैं नहीं जानता हूं, तो फिर चार किताब पढ़ के और बड़ा अपने को विद्वान मानता है, ठीक से पढ़ गया, दो साल
पिता के पास खड़ा हो गया
बड़ा काशी से,
लेकिन फिर भी ये गुण आए नहीं। पिता ने फिर उनको समझाया
और जब आत्मविद्या दी तो ये गुण उसके स्वभाव में आ गए। श्वेत केतु बड़ा विद्वान बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया और उनके पिता जो उदालक थे वे गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल के बच्चों की परीक्षा लेने के लिए बच्चों का पर प्रयोग किए, दो तीन बच्चों को कहा कि बेटे तुम उपवास पे रहो, दो तीन बच्चों को कहा कि तुम ऐसा सात्विक भोजन करो, दो तीन बच्चों को कहा कि खूब चरपरार मिर्च मसाले वाला खाओ, दो तीन बच्चों को कहा कि तुम तामसी भोजन करो। कुछ दिनों के बाद सब बच्चों को बुलाया, जिन्होंने खूब भूखामरी की उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारी तो याद शक्ति डाउन हो गई। बोले बेटा अति भूखा मरना शरीर के लिए ठीक, जो खूब खाते थे वो आलसी हो गए। बोले गुरुजी पढ़ने की रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती, बोले क्या पता रुचि नहीं होती, गुरु ने कहा खूब ठोक ठोक के खाया है। जयराम जी की उनको याद नहीं रहता क्योंकि खूब भूखा मरी किया है और उन्होंने खूब खाया, इसलिए रुचि नहीं होती। तीसरों ने तामसी और मादक पदार्थ खाए, वो गुरुकुल से भागने की इच्छा में, अब हमको पढ़ना ही नहीं, हम तो घर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और चौथे जो बच्चे थे उनके चेहरे पर नम्रता, मुस्कान और पढ़ाई में रुचि, और थोड़ा सा पढ़े जल्दी याद रह जाए, क्योंकि उन्होंने सात्विक भोजन किया था, तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पीना शुरू किया था, भोजन चबा चबा के करते थे। और हरि ओम ये प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार आहार से भी अपने मन का और व्यवहार का सीधा संबंध है। सुलभा, अगले जन्म में हम गुरु के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते थे, हमने अपने छोटे विद्यार्थी का अपमान किया, उसको पीट दिया, गुरु ने श्राप दिया कि इस छोटे विद्यार्थी को जब ज्ञान होगा वही तेरे को कराएगा। वही छोटा विद्यार्थी अष्टावक्र गुरु बनकर आया है, और मैंने गुरुद्वार का ब्रह्म ज्ञान सुना इसलिए मैं राजा जनक हुआ हूँ, और घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अगले जन्म का धन इस जन्म में काम नहीं आया, अगले जन्म के सर्टिफिकेट इस जन्म में काम नहीं आया, लेकिन अगले जन्म में गुरु के द्वार की सेवा और अगले जन्म का गुरु का ब्रह्म ज्ञान इस जन्म में हमारा उभर आया है, इसलिए मेरे को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान हो गया। सुलभा ने जो सवाल किए उसका जवाब जनक ने दिया, और जनक ने जो सवाल किए सुलभा ने प्रेम पूर्वक शास्त्रीय ढंग से जवाब दिया। जनक बोलता है कि विद्यार्थी हो तो ऐसे हो, और माता पिता ऐसे हों कि बच्चों के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति लाए, और राजा हो तो उनकी कदर करने वाला राजा हो, जय राम जी की। और गुरु भी ऐसे हों कि विद्यार्थियों की सोई हुई शक्तियां जगाए। हे सुलभा, तेरे को तो मैं शाबाश दूंगा, तेरे माता पिता को मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन तेरे को जिस गुरु ने प्राणायाम सिखाया, सुलभा जिस गुरु ने तेरे को नामदान मंत्र दीक्षा दिया, सुलभा जिस गुरु ने तेरे को अनुष्ठान की विधि बताई, उस गुरु के चरणों में मेरे हजार हजार प्रणाम कहना। साईं ते इतना मांगिए नौ कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। देवी संपदा वाला जब बोलता है तो मानो मधु टपकती, सारगर्भित बोलता है, दूसरे का दुख दूर करने को बोलता है, अपना अभिमान और घमंड छोड़कर बोलता है। लेकिन आसुरी संपदा वाला जब बोलता है तो अपना अभिमान और घमंड आगे धर के बोलता है। ज्ञानेश्वर महाराज टीका करते हुए कहते हैं कि ये अधम मनुष्य के लक्षण है। जैसे सर्प का बिल टेढ़ा होता है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले आदमी का बोलना टेढ़ा मेढ़ा और चोट करने वाला होता है। सर्प की पत्नी सर्पिणी, ऐसे बाण की पत्नी बाणी, वो ऐसी वाणी बोलता है कि सुनने वाले को चुभती रहती है। ये आसुरी स्वभाव वाले, दैत्य स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। वाणी बोलता है मानो ज्वालामुखी फूटते हैं, और कार्य करता है तो मानो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दक्ष ने यज्ञ तो किया था, यज्ञ कर्म तो अच्छा था, लेकिन शिवजी को नीचा दिखाने के भाव से किया था तो अंत में परिणाम बुरा ही आया। काम तुम अच्छा करते हो लेकिन अंदर में किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हो, उस काम का फल इतना मधुर नहीं आ सकता। काम तो तुम बढ़िया करते हो लेकिन अपना दंभ अहंकार या पाखंड फैलाने के लिए करते हो, तभी भी आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, आत्मरति नहीं मिलती। काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते वक्त पुरुषार्थ होता है, और काम के अंत में काम का, जो भी काम किया उस काम का फल आपके हृदय में फलित होता है। काम पूरा होने पर देखो कि हृदय में शांति फलित हुई, सरलता सज्जनता और आत्मतृप्ति फलित हुई कि अहंकार फलित हुआ, ईर्ष्या और द्वेष फलित हुआ या माधुर्य और प्रेम फलित हुआ? माधुर्य प्रेम और शांति फलित हुई तो तुम्हारा सत्कर्म सत्य स्वरूप ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और तुम आगे बढ़ोगे। लड़की है नन्नी मुन्नी, अपने खिलौने में खेलती है और कोई लेता है तो रोती है, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो अपना खिलौना भाई को भी बहन को भी देती, और बड़ी होती है तो अपना भोजन भाई बहन को खिलाती, और जब बड़ी होती है तो अपनी सहेलियों को भी अपनी चीज बांटती है, और आगे बढ़ती है तो जब शादी विधि हो जाती है तो अपना बनाया हुआ रसोई केवल अपने लिए नहीं पहले दूसरों को खिलाकर फिर खाती है, और थोड़ी विशाल होती है तो अड़ोस पड़ोस अथवा अपनी बहू बेटियों को भी देकर दादी माँ को या नानी माँ को या मैया को आनंद आता है। जितना कर्म का दायरा विशाल उतना ही ईश्वर के निकट, जितना कर्म का दायरा संकीर्ण उतना ही शैतान के निकट। आकाश पाताल में कोई शैतान या ईश्वर नहीं बैठा है, बद्रीनाथ में ईश्वर बैठा हो या सूर्य नारायण में ईश्वर बैठा हो या वैकुंठ में ईश्वर बैठा हो, हमारा ईश्वर एक देशी नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वभूत प्राणियों के हृदय में वह ईश्वर बैठा है, कर्म का दृष्टा बैठा है और फल का दाता बैठा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है, कोई नहीं देखता फिर भी कोई देख रहा है। जैसे अति विश्वासी आदमी ठगा जाता है, ऐसे अति भोगी आदमी भी आसुरी संपदा से ठगा जाता है। अति विश्वासी भक्त ठगा जाता है और अति भोगी विकारी ठगा जाता है। न अति भोग में पड़ो, न अति विश्वास में लिपसो, न अति अविश्वासी हो, मध्यम मार्ग। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि उस आसुरी संपदा वाले का आचरण होता है जैसे छुरी काटना ही जानती है, ऐसा ही उसका आचरण होता है। जो भी करेगा किसी न किसी को हानि पहुंचाएगा, समझो दैत्य स्वभाव का आदमी। वो फिर कहीं बबूल का पेड़ बनेगा या तो कोई सर्प बनेगा या ऐसी नीच योनियों में 84 लाख जन्मों तक भटकता रहेगा। सुई जोड़ने का काम करती है और छुरी तोड़ने का काम करती है, ऐसी दैवी संपदा वाला का आचरण शुभ होता है, अपने और दूसरों के लिए हित का सोचकर किया जाता है। जिसका चित्त दूसरों के दुख को देखकर द्रवित नहीं होता, उसके चित्त में करुणा नहीं उपजती है। जिसके चित्त में करुणा नहीं उपजती है, उसके चित्त में ईमानदारी की सेवा का संगीत नहीं छिड़ता, और जिसके जीवन में ईमानदारी का सेवा का संगीत नहीं छिड़ता, उसको आत्म तृप्ति नहीं मिलती है, आत्म संतोष नहीं मिलता है, आत्म रति नहीं मिलती है। वो रति फिर लेडी लेडा के संग से करता है, तृप्ति भोग वासना में खोजता है और संतुष्टि कुछ ढेर करके करता है, लेकिन आखिर अतृप्त हो जाता है, आखिर निराश होकर मरता है। जीवन निराशा की खाई में गिरने के लिए नहीं है, जीवन ज्ञान संयुक्त जीने में है। यस्य ज्ञानमयं तपः, सात्विक व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है इस बात को सुनकर मनुष्य, जो लोग अपना स्वभाव सात्विक बनाते दैवी बनाते वे ज्यादा फायदे में होते हैं। भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैष्णुम दया भूतस्व लोलुप्तम मार्धम हिरि चापलम। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है तन से मन से विचारों से वाणी से किसी को दुखाए नहीं। उसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा दवा नहीं पीता और माँ उसको डांटे नहीं, नहीं, माँ उसका हित चाहती है, फुफाड़ा मार दे। गुरु कभी कभार डांट देते हैं लेकिन अहित न करे। अर्थात काया वाणी और मन से जगत को सुख पहुंचाने का कर्म करने का नाम है अहिंसा। से तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, छुरी घुमाता है, लेकिन उसको हिंसक हम नहीं कह सकते। माँ कड़वी दवा पिलाती और डांटती, लेकिन उसको हम हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि माँ का उद्देश्य हमें सुख पहचाना है। ऑपरेशन करके डॉक्टर का उद्देश्य हमको स्वस्थ रखना। एक ठूंठ लगा था, कटा पेड़ सूखा था 3 साल से। गाय खुजली मिटाने के लिए अपने पेट को रगड़ रही थी। उसको जरा ठीक लगा तो जोर से जरक मारा तो ठूंठ का एक फाचर गाय के पेट में घुस गया, पक गया और उसी कारण गाय बिचारी मर गई। थोड़े दिनों के बाद बारिश हुई और वो ठूंठ फला फूला। गांव के लोगों ने महात्मा को कहा, महाराज हद हो गई, कसाई के वहां कुशलता और धर्मात्मा के वहां धाड़। ठूंठ था भयंक और गाय हत्या करने में निमित्त बना और अभी फला फूला है। महात्मा ने कहा धीरज रखो, एक आध साल बीता वो तो फला फूला हरा भरा हुआ, मानो आकाश से बातें करने को उभर रहा है। दूसरा साल हुआ, सर्दी बीत गई, बारिश बीती और फला फूला, सर्दी बीती, महाराज ये क्या है, ये तो अंधेर है। महाराज ने कहा धीरज रखो थोड़ी सी। आई जोरों की गर्मियों की आंधी, बमंडल आया और जड़ों सहित उसे गिरा गया। ऐसे कोई कूड़ कपट और दूसरों को सताकर बहुत ऊंचा हो भी जाता है, लेकिन कोई ऐसी आंधी आती कि जड़ सहित उसको गिरा देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करते समय सावधान रहो। आपने अच्छे काम किया और आपको इनाम मिला तो उस इनाम को आप बांट सकते हैं, या गवर्नमेंट को या साहब को भेंट में अर्पण कर सकते हैं। लेकिन बुरा काम की और सजा मिली तो उसको बांट नहीं सकते और न्यायाधीश को भेंट नहीं कर सकते। शुभ कर्म करो और ईश्वर को भेंट किया तो ईश्वर प्रसन्न होकर तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा, लेकिन अशुभ कर्म जब करेंगे उस समय भले पता न चले किसी को, लेकिन अशुभ कर्म का फल देर सवेर भीतर से बाहर की बरसात पड़ती है बौछार तो छाते से आप अपने को बचा लेते हो, लेकिन भीतर जब नालत की बौछार पड़ती है तो कोई छाता काम नहीं आता। इसलिए मेहरबानी करके कर्म करने के पहले सावधान रहो कि भीतर वाले की नालत की बरसात न पड़े। और इसलिए सुबह रोज उसको प्रार्थना करो कि ज्योतिद भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, मेरा विकार तो आता है जाता है, मेरा काम क्रोध आता जाता है, लेकिन उसको तू देखने वाला है सदा सलामत, तू मुझे कृपा करके बचाना। जो जाकी शरणी गए ताके ताकी लाज, उल्टे बहाव मछली चले बह रहे हो गजराज। जो जिसकी शरण जाता है वो उसकी रक्षा करता है। हाथी जंगल की शरण है और मछली पानी की शरण है। पानी की शरण होने पर उल्टे बाहों भी मछली आगे चलती है, लेकिन इतना गजराज बह जाता है, पानी अगर उसको शरण नहीं देगा तो मछली जाएगी कहां। ऐसे ही सच्चे हृदय से रोज नाम जप कर परमात्मा में गोता मारे तो परमात्मा रक्षा नहीं करेगा तो फिर वो साधक जाएगा कहां। काम क्रोध लोभ मोह ये तो आ जाता है, आवेश है, विवशता है, लेकिन कपट तो आदमी करता है। काम क्रोध में तो कभी वो अंतर्यामी क्षमा भी कर दे कि ये बेचारा फिसल गया, लेकिन बेईमानी तो आदमी जानबूझ के करता है, इसलिए उसमें जल्दी से माफी नहीं मिलती। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। बस ये क्या करेंगे, ये करना है, ये करना है, कितना लेगा कितना करेगा। विश्रांति भी पाना चाहिए। अब क्या बताऊं और क्या छूट जाता है मुझे भी पता नहीं। जय राम जी की। अब जो आपका अधिकार होगी और जो मेरी योग्यता होगी और जो उसकी मर्जी होगी, उसकी मर्जी आपका अधिकार मेरी योग्यता। जय जय। हो सकता है आपका अधिकार बड़ा हो और मेरी योग्यता बड़ी नहीं हो तो मैं नहीं भी सुना सकूंगा, ये भी हो सकता है। उसकी मर्जी न हो तभी भी नहीं सुना सकता हूं। हो सकता है कभी कभार, तो मैं आपको सच बताता हूं, कभी कभार तो कोई पुस्तक पढ़ता है, मैं बोलता हूं वाह वाह बहुत अच्छी, ये पुस्तक मंगाओ। फिर बोलते कि बापू ये तो अपने ऋषि प्रसाद को हम पढ़ रहे हैं। मैं क्या, रहे यार ये तो अपना ही है। जय जय रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने फोटो को प्रणाम कर रहे थे, गले लगा रहे थे, चूम रहे थे, बार बार नमस्कार कर रहे थे। सेवकों ने देखा कि पहले अर्ध पागल रहे थे, आज पूरे हो गए। अधचर्य तो पेरी हो बाव हाण जी पूरो चोरे थी। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े प्रभु दयाल, बड़े अच्छे। वाह वाह। बोले महाराज ये आपका फोटो है? बोले नहीं मेरा नहीं। बोले हाँ ये रामकृष्ण देव आपका ही है? बोले जब मैं नहीं रहा हूंगा तब खींचा होगा, तभी का होगा ये बात भी सच्ची है। जब आप संभल कर और अकड़ के बोलते हैं तो उसमें दंभ अभिमान और ये गड़बड़ आती, आपकी वाणी का वो प्रभाव नहीं रहता। लेकिन आप जब सहज में बोलते हो तो बोलने का ढांचा तो वही दिखता है, लेकिन आपकी सात्विकता से उस ईश्वर की वाणी को स्पर्श करके वाणी आती है तो आपके वचन सत्संग बन जाते हैं। नेता बोलता है तो भाषण हम लोग कहते हैं, प्रोफेसर बोलता है तो हम भाषण और लेक्चर कहते हैं, लेकिन संत बोलता है तो हम उसे सत्संग कहते हैं। लता मंगेशकर के गाती है तो उसके सांस और कंठ मधुर होने के नाते मीरा के पद वो गाए तो मीरा के स्वर और साज से भी लता मंगेशकर बाजी मार जाएगी। लेकिन फिर भी मीरा के पद अगर सीधे हम सुने तो हमें मानसिक शांति मिलेगी, और उनके गायन से मानसिक शांति नहीं मिलेगी, मनोरंजन मिलेगा। मनोरंजन एक बात है और मन की शांति दूसरी बात है। संत की वाणी से मन की शांति मिलती है, बुद्धि की स्वच्छता होती है, विचारों में पवित्रता आती है और नजर बदल जाती है। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। सत्संग नजर बदलने के लिए किया जाता है। अपने से बूढ़े बुजुर्ग जो ज्ञान में ध्यान में है उनके संपर्क में रहना चाहिए। जयराम जी की। वो आदमी सचमुच में अभागा है कि जिसको कोई कहने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अगर श्रेष्ठ पुरुष कहते टोकते तो हमारा कल्याण होता है, नहीं तो क्या है कि फिर विरोधी हमारी टांग पकड़ के नीचे उतारते, उसमें राग द्वेष बढ़ जाता है। पहले के जमाने में धर्म की रोक टोक मानकर राजा बूढ़े होने के पहले राज की आसक्ति छोड़कर एकांत में भजन करने चले जाते थे। जीवन में वैरागी भी चाहिए, त्याग का सामर्थ्य भी चाहिए और वाहवाई के साथ साथ थोड़ी अंतर्दृष्टि भी चाहिए कि वाहवाई जो कर रहे हैं वो तो अपना काम बनाने के लिए वाहवाई कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, वो हम जितना जानते हैं उतना लोग नहीं जानते हैं। जयराम जी की। जहां हमारी कमी हमें दिखे उसको हम सुबह रोज ध्यान के समय भजन के समय उस कमी को उखाड़ दें। मानो हम में डर है तो ओम ओम ओम, जरा जरा बात में डर किस बात, आज भय को नहीं पटकने दूंगा, मैं निर्भय रहूंगा। मानो मेरी चोरी करने की आदत है, आज का दिन मैं चोरी नहीं करूंगा, आज मैं साहूकार बनूंगा। हरे ओम हरे ओम। मानो मेरे को किसी को देखकर आंख मारने की आदत है, मान लो। जयराम जी की। मान लो तो आज आज जो भी बहू बेटी दिखेगी मेरी माँ और बहन के बराबर रहेगी। आंख क्यों मारूंगा? अगर आंख मारूंगा भी तो जैसे बहन को यूं करता हूं या माँ को यूं करूंगा, ऐसी पवित्र निगाह से करूंगा, नहीं तो फिर उसके अंदर में मेरे परमात्मा को देखूंगा। तो एक एक बुराई को उखाड़कर उसकी जगह पर विपरीत भाव, बुरे भाव की जगह पर विपरीत भाव क्या होगा? अच्छा भाव होगा। मानो मुझे चलते चलते खाने की आदत है, कैंडी खाने लग गया, मैं फूंकने लग गया, पान मसाला खाने लग गया कि नहीं आज का दिन पान मसाला नहीं, हरड़े का टुकड़ा खाऊंगा, पान मसाले में तो निकोटिन पॉइजन, ये अच्छी नहीं है। एक दिन में कोई महात्मा नहीं बन जाता और एक दिन में कोई वृक्ष फलित नहीं हो जाता है, एक दिन में कोई सती सावित्री नहीं बन जाती और एक दिन में कोई पवन सुत हनुमान नहीं बनता। धीरे 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 दुर्गुण निकालते जाते, सदगुण भरते जाते हैं, तभी सत्य स्वरूप की कृपा प्रकाशती है। बोले सतपुरुष है महापुरुष है, लेकिन हम भी भाई फिसल फिसल के ही चले हैं। जयराम जी की। ऐसा कोई धरती में माई का लाल कह दे कि मैं जन्मा और दौड़ने लगा और चलने लगा तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। जन्मा तो चला, धीरे धीरे सीखा, गोड़ों के बल से चला, फिर कहीं गिरा, फिर गाड़ी के बल से चला, फिर गिरा। ऐसे चलना चाहिए, सीखना चाहिए।